आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तीन नए फौजदारी कवानीन से मुल्क में फौजदारी मामलात में इंसाफ का जदीद तरीन निजाम कायम होगा। हुकूमत ने इम्तिहान के इनकाज से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए में मजबूत तरीकेकार की खातिर तलबा और वालदेन से राय मांगी है। अमरीका की एक आला अदालत ने कहा है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने जाती मामलात के लिए नहीं बल्कि सरकारी मामलात में इस्तस्ना हासिल है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड, आसाम और मेघालय में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और भारत उर्दन में 23 साल से कम उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरे फहरिस्त रहा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तीन नए फौजदारी कवानीन से जो कल नाफिजुल अमल हुए हैं मुल्क में फौजदारी मामलात में इंसाफ का जदीद तरीन निजाम कायम होगा। उन्होंने कहा कि फौजदारी निजाम इंसाफ अब पूरी तरह स्वदेशी हो गया है। इससे पहले इन तीन नए फौजदारी कवानीन के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब शाह ने कहा कि नए कवानीन से जल्द इंसाफ और मुतासरीन के हकूक को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इससे कबल सिर्फ पुलिस के हकूक का तहफ्फुज किया जाता था लेकिन अब मुतासरीन और शिकायत करने वालों के हकूक का भी तहफ्फुज किया जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा कि नए कवानीन में खवातीन और बच्चों के खिलाफ जरायम को तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि नए कवानीन में मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी जाब्ते मौजूद हैं।
सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है।
जनाब शाह ने इन नए कवानीन के बारे में मुबैना तौर पर झूठ फैलाने के लिए अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कल बहस का आगाज हुआ। लोकसभा में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने बहस में हिस्सा लेते हुए अवाम की बहबूद और मईशत की रफ्तार बढ़ाने के लिए पिछले 10 साल में सरकार की जानिब से किए गए इकदामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर लाया गया है और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ अफराद को मुफ्त अनाज फराहम किया है। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने दीगर मामलों के अलावा नीट इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों, अग्निवीर स्कीम, मणिपुर में बेचैनी, नोटबंदी, बढ़ती महंगाई और किसानों से मुतालिक मामलों उठाए हैं। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि नीट इम्तिहान अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है न कि गरीबों की मदद के लिए। अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने एक खास बरादरी पर राय जनी की जिस पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने एतराज किया। इस मामले पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अरकान को खिताब करते हुए ऐवान के वकार को बरकरार रखना चाहिए। बाद में जनाब गांधी ने वजाहत की कि उनका बयान किसी खास बरादरी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए था। इधर राज्यसभा में कल जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने नीट इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों पर अपोजिशन अरकान की तरफ से पेश किए गए इल्तवा के नोटिस नामंजूर कर दिए। बाद में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस दोबारा शुरू हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि खिताब में एक नजरियाती बयान होना चाहिए था, इसका तस्करा होना चाहिए था कि चैलेंजों से किस तरह निपटा जाएगा, लेकिन खिताब में इस तरह के निकात या रहनुमाई का फुकदान है। जनाब खड़गे ने इल्जाम लगाया कि इसमें गरीबों, दलितों और अकलियतों के लिए कुछ नहीं है। इत्तला-ओ नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी पर लोकसभा में उनकी तकरीर के दौरान एक मखसूस फिरके के खिलाफ रायजनी किए जाने का इल्जाम आयद किया। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि उनके बयान से लोगों को तकलीफ हुई है।
संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। श्री राहुल गांधी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।
जनाब वैष्णव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने हमेशा आईनी इदारों की अहमियत को कम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत के दौरान पार्टी ने पार्लियामेंट और अदलिया की अहमियत को कम और कमजोर किया है। अयोध्या के ताल्लुक से जनाब गांधी के बयान पर जनाब वैष्णव ने इस बात की वजाहत की कि अयोध्या के दुकानदारों को मुआवजे के तौर पर 1,253 करोड़ रूपये दिए गए हैं और उनको दुकानें दूसरी जगह दिए जाने के लिए भी इकदाम किए गए हैं। ज़िराअत के महकमे के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में आसाम के ज़िराअत के महकमे के वजीर अतुल बोरा के साथ एक मीटिंग की, जिसका मकसद मुल्क में ज़रई शोबे को मजीद रफ्तार देना है। बातचीत के दौरान ज़िराअत और किसानों की बहबूद से मुतालिक दीगर मामलात के अलावा आसाम में मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को फरोग देने और फसल को जखीरा करने की सलाहियत बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। जनाब चौहान ने कहा कि इसकी किसानों और ज़रई शोबे के मफादात इंतहाई अहम हैं और मरकजी हुकूमत सलाहियत साजी से मुतालिक वर्कशॉप और तरबियत की खातिर आसाम को मुकम्मल हिमायत फराहम करना जारी रखेगी। हुकूमत ने इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए में एक मजबूत तरीकेकार को फरोग देने के लिए तलबा और वालदैन से तजावीज और राय तलब की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इतलात और नशरियात की वजारत ने बताया है कि डॉ के राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप के तहत एक आला सतही कमेटी ने तलबा और वालदैन से तजावीज, नजरियात व ख्यालात तलब किए हैं। वजारत ने मजीद कहा है कि ये लोग इम्तिहानात के अमल के तरीकेकार में इस्लाहात, डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक प्रोटोकॉल और ढांचे में बेहतरी, नीज एनटीए के काम करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तलबा और वालदैन कमेटी को इस महीने की 7 तारीख तक अपनी राय भेज सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमरीका की एक अदालत उज़्मा ने पहली बार यह तस्लीम किया है कि मुल्क के साबिक सदर को ओहदे पर रहते हुए कुछ मखसूस कार्रवाई के लिए मुकदमे का सामना करने से इस्तिस्ना हासिल है। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब अमरीका की आला अदालत ने एक अदालती फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा गया था कि उन्होंने फौजदारी के इल्जाम से खुद को बचाने की कोशिश की, जिसमें 2020 के इंतखाबात के नतायज को पलटने की कोशिश शामिल है। अदालत ने कल 6-3 से यह फैसला सुनाया कि साबिक सदूर को हासिल आईनी इख्तियार के अंदर किए गए उनके काम के लिए निजी तौर पर किए गए काम के बरक्स मुकदमे से इस्तिस्ना हासिल है। अदालत के 3 लिबरल जजों ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। 78 साल ट्रंप अमरीका के पहले साबिक सदर हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया गया और ऐसे पहले साबिक सदर हैं जिन्हें किसी जुर्म के लिए कसूरवार करार दिया गया। इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी तसादुम के दौरान गिरफ्तार किए गए तकरीबन 50 फिलिस्तीनी कैदियों को कल रिहा कर दिया गया। इसराइली ज़राए ने कहा है कि इन कैदियों को मुख्तलिफ जगहों से रिहा किया गया है, जिनमें जुनूब में वाके स्टेटेमियन फौजी हिरासती कैंप शामिल है, जहां जारी तसादुम के दौरान गिरफ्तार किए गए बहुत से फिलिस्तीनियों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि टेमियन में कैदियों की तादाद कम करने की कोशिश के तहत ये रिहाई अमल में आई है। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर के जरिए जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के बाद ये रिहाई अमल में आई है, जिसमें इंसानी हकूक के ग्रुप कैद में सख्त हालात को चैलेंज कर रहे हैं। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज उत्तराखंड, आसाम और मेघालय में बहुत जोरदार बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत शिमाली भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में अगले 3 से 4 रोज के दौरान शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। गुजरात और मगरबी साहिल में भी इसी तरह की सूरतहाल रहने का इम्कान है। मानसून के मजीद सरगर्म रहने के सिलसिले में तफसील हमारे नामा निगार से।
राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी मांदा हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के मजीद पेशकदमी करने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के माहाना जायजे के मुताबिक जुलाई के पूरे महीने के दौरान मुल्क में माहाना बारिश मामूल से ज्यादा रहने का भी इम्कान है। شمال مشرقی بھارت کے کئی حصوں، شمال مغربی بھارت کے کچھ حصوں، مشرقی اور جنوب مشرقی جزیرہ نما بھارت کو چھوڑ کر ملک کے بیشتر حصوں میں معمول سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ دلی سے ارپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔
اس دوران قومی راجدھانی میں صبح سویرے ہلکی بارش ہوئی، تاہم آج شہر میں شدید بارش کے ساتھ آسمان ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ وادی کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان بلا رکاوٹ جاری ہے۔ اس یاترا کا آغاز 29 جون کو ہوا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
کل یاترا کے تیسرے دن ملک کے مختلف حصوں سے 30,000 سے زائد یاتریوں نے شری امرناتھ جی پوتر گفا میں قدرتی طور پر بنے برف کے شیو لنگم کے درشن کیے، جبکہ 6,537 یاتریوں کا ایک اور تازہ دستہ بھگوتی نگر یاتری نواس جموں سے نونون، پہلگام اور بالتل کے جڑوا بیس کیمپوں کے لئے آج سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ روانہ ہوا۔ حکام کے مطابق کل 30,437 شردالوں نے مقدس گفا میں بھگوان شیو کے درشن کیے۔ یاتریوں نے بالتل، پہلگام، چلنواڑی کے جڑوا ٹریکس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی مقدس گفا کا درشن کیا ہے۔ دریاسنا یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ یاتری روز وادی کشمیر کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ آکاشوانی اردو خبرنامے کے لیے شرینگر سے میں سنیل کول۔
انڈونیشیا اور این ایف ڈی سی فلم فیسٹیول کل ممبئی میں نیشنل میوزیم آف انڈین سینما میں شروع ہو گیا ہے۔ سینما شائقین کے لیے یہ 6 روزہ فیسٹیول اس مہینے کی 6 تاریخ تک جاری رہے گا۔ این ایف ڈی سی فلم فیسٹیول کا یہ تیسرا ایڈیشن ہے۔ راجستھان کے کرولی ضلع میں ایک کار اور ایک ٹرک کے بیچ ٹکر ہونے سے 9 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ کل شام سسیدی گاؤں کے نزدیک کرولی ماندریال روڈ پر پیش آیا۔ کشتی میں بھارت اردن کے شہر عمان میں 23 سال سے کم عمر کی ایشین ریسلنگ چیمپئن شپ 2024 میں سر فہرست رہا۔ نوجوان بھارتی پہلوانوں نے فری اسٹائل کشتی میں سونے کے 4، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغوں سمیت کل 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ابھینو نے 70 کلوگرام کے زمرے میں، جوائنٹلی کمار نے 92 کلوگرام، ساحل جگلان نے 97 کلوگرام اور انیرودھ کمار نے 125 کلوگرام کے زمرے میں سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ روہت نے 65 کلوگرام اور جیدیپ نے 74 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کے تمغے حاصل کیے، جبکہ شبھم نے 57 کلوگرام اور امت نے 79 کلوگرام میں کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم اس ماہ کی 6 سے 14 تاریخ تک زمبابوے کے ساتھ 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے ملک میں 3 نئے فوجداری قوانین نافذ ہونے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ امیت شاہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نئے فوجداری قوانین تفصیلی بحث کے بعد بنائے گئے۔ انہوں نے اپوزیشن کے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ یہ قوانین جلد بازی میں منظور اور نافذ کیے گئے ہیں۔ بیشتر اخبارات نے پارلیمنٹ میں حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان نوک جھونک اور شوروغل ہونے سے متعلق خبر کو بھی صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار پرتاب نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ افسران کے لیے لوگوں کا اعتماد جیتنا اور برقرار رکھنا ضروری ہے۔ بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت، صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے انوراگ ٹھاکر کا بیان، اس خبر کو راشٹریہ سہارا نے اہمیت دی ہے۔ فوج کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اخبارات نے نئے فوجی سربراہ جنرل اپیندر دویدی کی اس یقین دہانی کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ 3 نئے فوجداری قوانین سے ملک میں فوجداری معاملات میں انصاف کا جدید ترین نظام قائم ہوگا۔ حکومت نے امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ڈی اے میں مضبوط طریقہ کار کی خاطر طلبہ اور والدین سے رائے مانگی ہے۔ امریکہ کی ایک اعلی عدالت نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ذاتی معاملات کے لیے نہیں بلکہ سرکاری معاملات میں استثنا حاصل ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اتراکھنڈ، آسام اور میگھالیہ میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور بھارت اردن میں 23 سال سے کم عمر کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں سر فہرست رہا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔